ओम शांति। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना। हम सभी का लक्ष्य क्या है? क्या करें? बाप समान बनना या नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। क्या लक्ष्य है? एक लक्ष्य बताओ ना। लक्ष्मी नारायण बनना, दोनों बनना है, लक्ष्मी भी नारायण भी, देवता बनना। देखिए हमारा सबसे पहला तो लक्ष्य ये है कि हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाबा ना। ब्रह्मा बाबा हमारी तरह था ना, ब्रह्मा बाबा हमारी तरह थे, उनको भी शरीर था, हमें भी शरीर है, उनकी भी जिम्मेवारियां थी, हमारे भी जिम्मेवारियां हैं, उनका भी परिवार था, हमारा भी परिवार है ना। नहीं ऐसा नहीं, हम सभी परिवार से है ना। नहीं, बिना परिवार के कोई ऊपर से आया? सीधा सीधा कोई ऊपर से आया? आसमान से बरसात हुई टपक गया नीचे, ऐसे हुआ कि? कोई ऐसा हुआ कि? कोई नहीं ना। हम सबका लौकिक परिवार है, जो बाबा जो बहने समर्पित हो गई उनका अलौकिक परिवार, हमारा भी अलौकिक, लौकिक अलौकिक दोनों परिवार है ना। उन सभी जिम्मेवार, आप जो घर में परिवार में रहते हैं उनकी भी जिम्मेवारियां हैं, सेंटर पे जो बहने रहती है उनकी भी जिम्मेवारियां हैं, सभी की जिम्मेवारियां हैं कि नहीं है? तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे सब जिम्मेवारी को संभालते हुए, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी को संभालते हुए, सब कार्य करते हुए बाबा कैसे, बाबा का लक्ष्य क्या था? जब बाबा को पहला पहला साक्षात्कार हुआ बाबा के क्या था? जो बाबा का पहला साक्षात्कार क्या हुआ बाबा को बनारस में? विनाश का साक्षात्कार हुआ। कैसे विनाश हो रहा है ना? तब तो मिसाइल्स बने भी नहीं थे, पर बाबा ने तब देखा मिसाइल से युद्ध चल रही है, एटम बम तब तक बने नहीं थे, एटम बम के द्वारा युद्ध चल रही है। और कैसे चारों तरफ आग लगी हुई है, कैसे भूकंप आ रहे हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी कैसे विनाश कर रहे हैं। फिर बाबा को नेक्स्ट साक्षात्कार कौन सा हुआ? विष्णु का, चतुर्भुज का। और विष्णु ने क्या कहा? तत्त्वम। तो विनाश के बाद बाबा ने कहा, विनाश तो देख के बाबा एक बार तो डर गए थे, किंतु बाद में बाबा ने कहा नहीं चलो, अब विष्णु का साक्षात्कार हुआ, वो वहीं पे हुआ था हैदराबाद में। तो बाबा ने कहा मैं चतुर्भुज बनने वाला हूँ ना, मैं विष्णु बनने वाला हूँ। और तीसरा साक्षात्कार क्या हुआ बाबा को? स्वर्ग का है ना, नई दुनिया का, कि कैसे नई दुनिया आने वाली है और कैसे ऊपर से सितारे उतरते हैं और वो कैसे देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ठीक है। और चौथा साक्षात्कार क्या हुआ बाबा को? बॉम्बे में है ना, बबुलनाथ के मंदिर के सामने बाबा घर था, तो बाबा सत्संग में बैठे थे, बाबा वहां से उठे और अपने कमरे में गए, बाबा को वहां पर साक्षात्कार हुआ शिव बाबा का, निराकार शिव बाबा का। बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा ने उनके मुख अंदर प्रवेश कर क्या कहा? निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम निज निज आनंद, मतलब निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम। तो जब से बाबा के ये प्रवेशता हुई तब से बाबा को क्या निश्चय हो गया कि मुझे क्या बनना है? मुझे नर से श्री नारायण बनना है ना। भगत तो पहले थे बाबा, तो बाबा को लक्ष्य हो गया कि मुझे ये बनना है, राइट। और बाबा के जो, बाबा को जैसे 1932 से ही बाबा का प्रैक्टिस क्या थी, बाबा रोज शाम को सोने के पहले अपनी दरबार लगाते थे है ना, आत्मा राजा बन के। दरबारी कौन कौन थे? मन बुद्धि संस्कार, और मन बुद्धि संस्कार से बातें करते थे, इवन अपने पांचों कर्मेंद्रियों से भी बातें करते थे कि तुम्हारा क्या हाल है, कैसे चल रहा राज, तुम ठीक से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप दरबार लगाते रोज अपनी सोने के पहले? दरबार लगाते नहीं लगाते? नहीं लगाते। जो ब्रह्मा बाबा ने पहले किया शिव बाबा के आने से पहले, वो भी काम हम नहीं करते क्या? नहीं करते। तो कैसे कैसे हम बाप समान बनेंगे? जो ब्रह्मा बाबा ने किया हमको फॉलो तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना, मतलब एकदम बाबा को, जिस दिन से भी ये बाबा को 1936 में जिस दिन शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद मतलब जो दादियां बताती हैं, निर्मल शांता दादी बताती थी, उसके बाद हम बाबा को, बाबा बदल गया था। उस दिन से बाबा की प्रवेशता हो गई शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा में, और उस दिन से बाबा बदल गया। दादी बोलती है कि हम बाबा को देखते थे, बाबा वो पुराना वाला बाबा दिखाई नहीं देता था, हमारा जो लौकिक पिता था वो नजर नहीं आता था, हमारी हिम्मत नहीं होती उनको लौकिक पिताजी कहने की, है ना। वो एकदम अलौकिक हो गए, एकदम डिफरेंट हो गए, है ना। यशोदा माता को भी एकदम डिफरेंट, उसको लगता ही नहीं था कि मेरा मेरा मेरे हस्बैंड है, मेरे पति है। तो सबके सब उनको बाबा ही कहने लगे, है ना। तो इतना चेंज एकदम से। और बाबा ने 1934 में जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने वहीं बनारस में ही अपने भागीदार को बोल दिया कि आप अपना हिस्सा ले लो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, झाटकू एकदम झाटकू, है ना। तो लक्ष्य और लक्षण, है ना। तो बाबा का लक्ष्य तो था क्योंकि नारायण का भगत था, तो बाबा को था कि पहले तो भक्ति करते थे कि तो सपने में भी था मैं नारायण बनूंगा, कि तुझे तो बाबा ने कहा सत्य गाने वाला है तुमको ये दुनिया बनानी है, और फिर बाबा ने लक्ष्य दे दिया कि तुमको अब विष्णु जैसा बनना है, चतुर्भुज बनना है, तत्वम, है ना। तो बाबा को क्लियर हो गया। तो जैसा ब्रह्मा बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा ने 33 साल कैसे तपस्या की है, कैसे तपस्या की। बाबा को पहले दिन सभी ने फरिश्ता देखा है, दादियों ने कभी बाबा को, किसी को बाबा ने किसी को आंख दिखाई हो, किसी को डांट लगाई हो, किसी बात में जल्दी चिंता गुस्सा किया हो, कभी है कोई बात ऐसी, किसी बात का लोभ किया हो, किसी से मोह किया हो, ऐसा है सुना। सब मैं तो सभी दादियों से मिला हूं, सभी दादियों के साथ में बहुत समय मिला मुझे साथ में रहने का, उनसे हूबहू मिलने का, उनकी सेवा करने का, सभी दादियों का, लगभग सभी दादियों का। किंतु बाबा ने, मैं तो 1989 के बाद जितनी भी दादियां, मैं जब से 1986 से ज्ञान में आया तब से जितनी दादियां, जो भी दादियां बड़े थे उनको सबको मिलना जुलना होता था, उनके साथ बैठना होता था, बातचीत करते थे, उनसे अनुभव अपने सुनाते थे वो, तो बहुत सारी बातें होती थी। तो मैंने देखा कि कैसे बाबा ने क्या किया, और हमें भी, क्योंकि एक सबसे अच्छा रास्ता क्या है, सबसे सहज रास्ता कौन सा है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया अगर हम उसको कॉपी कर ले तो हम भी उसी रास्ते पे पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल था क्या? हमारे सामने तो एग्जाम्पल है, सैंपल है, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई सैंपल नहीं था। किंतु ब्रह्मा बाबा को अपने अंदर से इतनी दृढ़ता आ गई, इतना बाबा को जो साक्षात्कार चार हुए, बाबा को उससे इतनी स्ट्रेंथ आ गई, और शिव बाबा उसके अंदर आ गए, तो बाबा का जो था ना व्यवहार, जो बाबा को दो बात समझ में आ गई, एक स्वयं समझ में आ गया और दूसरा समय समझ में आ गया। क्या चीज समझ में आई? एक तो स्वयं मैं कौन हूं, दूसरा मेरा कौन है, मैं कौन में अपने आप आ गया, और दूसरा क्या समझ में आया, उसका समझ में है कि समय कौन सा है। बाबा ने बता दिया कि समय जो है भी बदलने का समय है, परिवर्तन होने का समय। अगर स्वयं समझ में आ जाए मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है, जो दादी जानकी का स्लोगन था ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, मुझे अब क्या बनना है, ये भी बाबा को समझ में आ गया, मुझे क्या बनना है ना। लक्ष्य तो आप सबको भी समझ में है ना, सभी को। तो तब से एक तो ये, दूसरा समय, समय बदलने वाला। अब समय आ गया बदलने का, समय आ गया नहीं आ गया अभी, अभी हैं जी, नजारे कितनी दूर दिख रहे हैं, कितनी दूर है नजारे, कि नजर में आ गए कि नजारे दूर हैं अभी, अभी तो नजर में आ गए ना, नजर में नहीं आया अभी तक, अभी एक साल से नजर नहीं आया क्या, नजर आया ना एक साल से, क्या नजर आया, आ गया ना समय, तो आ गया ना परिवर्तन होने का समय आ गया। चाहो नहीं चाहो, आप चाहो या ना चाहो, कोई कहे नहीं मैं तो अभी मरना नहीं, मैं तो अभी 20 साल का ही हूं ना, अभी क्या कर, 20 साल की हूं ना, अभी क्या मरने का है ना। अभी चाहो नहीं चाहो जाना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से जाओ चाहे रो के जाओ। बाबा ने कहा लेके जाऊंगा, मारपीट के भी ले जाऊंगा, या तो प्यार से चलो, नहीं तो फिर मारपीट के लेके जाऊंगा। लेके तो जाना पड़ेगा, क्योंकि समय परिवर्तन होने का ही है, जाना ही पड़ेगा। या तो प्यार से बदल जाओ, नहीं तो बदलना तो पड़ेगा। बदलना क्या पड़ेगा, क्या बदलना पड़ेगा? हम सब चिपके हुए थे कहां पर, देह भान में, है ना। देह भान से, देह के संबंध संपर्क के भान से, देह के पदार्थों के भान से, और देह के स्वभाव संस्कार के भान से, हम इनसे इतने, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे दिल में, चेतना में इतना गहरा उतर गया ये कि हमें दिन रात यही रहता है। अभी तो नहीं, हमें तो नहीं रहता, इतना कम हो गया ना, अभी कम होता जा रहा है, दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। तो ये दुनिया तो जाने वाली है ना, देह जाने वाली, रहने वाली है। जो सत्युग में देह लेके, जो ऊपर ऊपर जाएंगे, देह को साथ लेके जाएंगे, हाथ उठाओ, नहीं लेके जाएंगे। जो देह के संबंध संपर्क साथ में, मां को, पिताजी को, पत्नी को, पति को लेके जाएंगे, वो हाथ उठाओ। बच्चे तो साथ जाएंगे ना, बच्चे तो इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़े किए आपने, नहीं एक दो बच्चा तो ले जाएंगे साथ में, नहीं अभी कोविड हुआ लेके गए ना साथ में, बच्चे नहीं गए, बच्चे साथ में नहीं गए, नहीं गए बाप या तो बच्चे साथ में नहीं गए, कोई बच्चा साथ नहीं गया, जलाने भी नहीं गया, नहीं बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गया, है ना, गया क्या, गया अभी तो डॉक्टर ने देखने नहीं दिया, है ना, नहीं पास में आने दिया क्या। तो संबंध संपर्क ना, कोई साथ नहीं जाएगा ना। और देखे पदार्थ, आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो 100 रुपये तो लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। रास्ते में पानी वानी पीना पड़ा तो नहीं लेके जाएंगे, एक एक पानी की बोतल तो ले जाएंगे ना, 1 लीटर वाली, नहीं लेके जाएंगे। 1 लीटर वाली पानी की बोतल तो कहीं भी जाते लेके जाते ना, हमेशा रास्ते में यहां से अहमदाबाद जाना होता है, हम तो लेके जाते हैं 1 लीटर पानी, तो नहीं ले जाते, लेके जाना पड़ता है ना, तो पानी कुछ ना कुछ तो लेके जाते, नहीं लेके जाते। और देखे स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लेके जाते हैं साथ में, जाएंगे ऊपर, वो तो सूक्ष्म मतलब शुद्ध संकल्पों की दुनिया है ना, वहां भी नहीं ऐसा कुछ है ना, और परमधाम में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है ना, तो सत्युग में भी ऐसा होता ही नहीं है ना, काम विकार, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। इवन जब इस दुनिया में उतरते हैं ना, जब हम आते हैं ना, जैसे ये जन्म लिया मान लीजिए, बच्चे थे, तो बच्चों में होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है क्या? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता को देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, जैसे कह रहे बच्चे मन के सच्चे, ये सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, पर जो जो इनकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। ऐसा गीता ने बचपन में पढ़ते थे ना, तो बचपन में भी, इवन बचपन में जब हम बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, मां के गर्भ से आते, तो भी हमारे अंदर कोई विकार नहीं होता है, होता है क्या? और विकार, ये 5 विकार हमारे अंदर जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज से मिलते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो लेयर्स हमारे पर चढ़ती जाती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लेयर्स चढ़ती जाती है, और फिर उसके कारण उसके संस्कार, आलस आता जाता है, अलबेलापन है ना, दूसरों में दोष देखने की आदत, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, ये 10 उसके बच्चे हैं इन 5 विकारों के ना। तो ये हमारे अंदर ये संस्कार आदत के रूप में आ जाते हैं, आलस की आदत पड़ जाती है, बेलेपन की आदत पड़ती है, दूसरों में दोष देखने की आदत पड़ जाती है, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, चिंता की आदत, डर की आदत, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष की आदत पड़ जाती है। ये सारी चीजें यहीं छोड़ के जानी है ना, नहीं छोड़ के जानी। इवन बुढ़ापे में जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम देखते हैं, मैं अपने आप को देखता हूं, 45 साल का था तो अलग था, 50 का हुआ तो और ठीक, स्वभाव संस्कार बदला, 55 के और थोड़ा ठीक हुआ, 60 के हुए और बदला है ना, और थोड़े बड़े हो रहे, जैसे से होते जा रहे ना, अपने आप ही ज्ञान का असर तो, ज्ञान और योग का असर तो है ही, धारणा का असर तो है ही, किंतु अदरवाइज भी मैं देखता हूँ, दुनिया में देखता हूँ, और जो नॉन वीक है उनको भी देखता हूँ, कि उनके अंदर भी अपने आप विकार छूटते जाते हैं, काम विकार खत्म, क्रोध खत्म, कम होता जाता, लोभ खत्म, मोह कम होता जाता, जैसे समाज को देखते हैं ना, बच्चों को देखते हैं, बच्चों के व्यवहार को, अपने आप ही मोह कम होता जाता है, अहंकार खत्म होता है। हाथ पैर में जान रहती नहीं, दिमाग काम करता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, है ना, तो अपने आप ही अहंकार भी खत्म होता जाता है ना? अपने आप डिटैचमेंट भी, लोभ भी खत्म होते, कम होता जाता है। तो पैदा होते तब भी और जाते टाइम भी फिर क्या होता है, अपने आप ही विकार कम हो जाते हैं ना, नहीं होते, होते हैं ना कम अपने आप। तो ये मैं समझने की बात है कि हमारे जो ये चार बातें हैं ना मुख्य, जो अभी थी ना संडे की मुरली क्या थी, चार बातों से न्यारा बनो थी ना, याद है, देह से न्यारा, देह के भान से, देह के संबंध संपर्क के भान से न्यारा, देह के पदार्थों के भान से न्यारा, और देह के स्वभाव संस्कार के भान से न्यारा। तो हमारा लक्ष्य देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा ने झटके से छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने झटके से एकदम झाटकू, है ना, एकदम देहभान छोड़ दिया एकदम से, है ना। कितना बाबा सिंपल रहा, कितना निरहंकारी रहा, रहा नहीं रहा, एकदम देहभान छोड़ दिया। देह के संबंध संपर्क का भान, बच्चे थे, बेटियां थी, युगल थी, एकदम देह के संबंध संपर्क तो फिर भी निभाए, किंतु खत्म कर दिया। जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते थे ऐसे अपने बच्चों से व्यवहार करते थे, जैसे और बहनों से व्यवहार करते ऐसे यशोदा माता से व्यवहार करते थे। फ्रेंड्स नहीं था, नारायण दादा गए तो नारायण दादा को कुछ मदद नहीं की कि इस रास्ते पे चलते हो चलो, नहीं तो फिर जाओ। उसको बॉम्बे में फोन कर सकते थे बाबा, बाबा को बहुत जानने वाले थे मदद करने के लिए, तो बाबा ने मदद नहीं करने के लिए बोला, किसी को भी नहीं बोला। तो बता एकदम साक्षी भाव ना, और देखे पदार्थों का भान कैसे था। मां बाबा आखिर तक अपनी झोपड़ी में, अभी तो झोपड़ी बहुत अच्छी है, वो तो घास फूस की झोपड़ी थी ना, बिल्कुल ऐसे फर्श कच्चा था, और बाथरूम भी कैसा था, सिंपल वाला ना, बिल्कुल सिंपल, खुला, खुली छत वाला, आखिर तक उसमें ही रहे, जरा भी किसी पदार्थ का भान नहीं, कभी किसी का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहना। माताएं लेके आती थी, भाई लेके आते थे कपड़े, चीजें लेके आते थे, बाबा ने कोई चीज यूज नहीं, कभी भी नहीं यूज की, और देह का स्वभाव देखा ही नहीं, कोई अंश भी नहीं देखा, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मनो, ना अहंकार, ना आलस देखा बाबा के अंदर किसी ने भी। रात को भी बाबा जाग रहे हैं, 12 बजे जाओ तो भी जाग रहे हैं, रात को जाओ तो भी जाग रहे हैं, 12 बजे जाओ तो लगता था बाबा भी जाग रहे हैं, है ना, बाबा उस समय योग निद्रा में होते थे। तो अगर ऐसा बनेंगे तब तो ऐसा बाबा का जो लक्ष्य था, किंतु उस लक्ष्य जैसा हमको अभी फॉलो करना पड़े ना, नहीं करना पड़ेगा। देखो ब्रह्मा बाबा ने इतना जबरदस्त पुरुषार्थ किया कि उन्होंने 33 साल में एक हफ्ते के रूप में शुरू से देखा, और बाबा को शुरू से देखते थे ना, बाबा को दो चीज की स्मृति सदा थी, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की और आदि देवता स्वरूप की। और मेरी जो स्मृति होती है ना, जो मुझे जो, 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 जो याद होता है ना, अंदर स्मृति होती है, वही मेरे चेहरे से नजर आता है। बाबा को अपने देहभान की स्मृति नहीं थी, बाबा को हमेशा अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति थी ना, अपने अशरीरी रूप की स्मृति थी हमेशा। तो बाबा के सामने कोई आता था वो भी अशरीरी बन जाता था, कोई भी आए, ब्राह्मण आए, दूसरा बाहर वाले भी आए, तो वो भी अशरीरी बन जाते थे। ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी आता था, ब्रह्मा बाबा को स्मृति क्या थी, विष्णु बनना है, बस मैं अभी शरीर छोड़ा विष्णु बनूंगा। और ब्रह्मा बाबा के सामने आते क्या होता था, ब्रह्मा बाबा का स्वरूप ही उनको विष्णु का दिखाई देता, श्री कृष्ण का दिखाई देता था। इवन ब्रह्मा बाबा के सामने जो आते थे ना, सरदार आते थे, कोई और भी जाति के लोग आते, अलग अलग सबके इष्ट देव अलग अलग होते ना, जो ब्रह्मा बाबा को हालांकि किसी और ख्याल से आते थे, किंतु ब्रह्मा बाबा के सामने आते ही उनको जैसे किसी को गुरु नानक देव दिखाई देते थे, एक सरदार जी आए थे मारने के लिए कृपाण अंदर रख के, है ना, तो जैसे उससे देखा, उनको दूर से देखा तो उनको लगा कि मैं मारने के लिए जा रहा हूं, जी सामने देख पास गए तो उनको क्या दिखाई दिया, गुरु नानक देव खड़े। तो क्या हुआ, तो उसको उसके तुरंत कृपाण से निकाल के बाहर फेंक दी, मैं अपने गुरुजी पर मतलब उसको ऐसे करने चला था क्या। तो ये स्थिति थी, मतलब जैसे स्मृति अगर आपकी होगी ना कि मैं इष्ट देव हूं, मैं अश्चपन इष्ट देव हूं, ये स्मृति हमें रहे तो फिर हमारा क्या होगा, आने वाला समय कैसा है, अभी समय आगे समय समय की पुकार क्या है? समय की पुकार तो यही ना कि जलपन बने संपूर्ण बने। नहीं, संपन्न संपूर्ण कैसे बनेंगे? चलो मैं एक बार पूछता हूं आप में से, जिनको 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य है वह हाथ उठाओ। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है वह हाथ उठाओ। सीधा सीधा उच्च राइट वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला तो लेफ्ट वाले में बन जाएंगे ना, राइट वाला। हाँ उठाओ उठाओ, ऊंचा ऊंचा, आधा में तो आधा ही बनेंगे ना फिर। बाकी कुछ लोग नहीं भी उठा रहे। आपको राम सीता बनना है क्या है? बाकी लोगों को यह समझ नहीं आया क्या बनना है बताओ? लक्ष्मी मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? 16 कला संपूर्ण बनने का ना सभी का। तो हम सभी लक्ष्मीनारायण बनना चाहते हैं ना, संपन्न और संपूर्ण बनना चाहते हैं। 16 सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम सत्युग में जाके बनेंगे, यहां बनना है हमें देवी देवता, यहां बनना है कि वहां जाके बनेंगे? जो समझते हैं यहां बनना है वहां तो उठाओ, जो समझते वहां जाके बनेंगे वहां तो उठाओ। सत्य लक्ष्मीनारायण तो वहां जाके बनना है ना, यहां थोड़ा ना बनना। देवी देवता यहां बनना है कि वहां बनना है? क्या कह रहे? यहां बनेंगे, उन जैसे गुण यहां दान कर। बहुत अच्छी बात है, भावना पड़ेगा है ना। अब जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बनना है तो हमें जो हमें जैसे बाबा को सम्मान मिला, बाबा को क्या सम्मान मिला, क्या सम्मान मिला बाबा को? पहले 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 तो भेद की वैराग्य वृत्ति आ गई, पहला साक्षात्कार, और पहले से बाबा स्वराज्य अधिकारी बनने के अभ्यास कर रहे थे। आत्मा राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं, तो बाबा अभ्यास कर रहे थे। फिर दूसरा सम्मान बाबा को मिला विष्णु का, चतुर्भुज का। विष्णु का मतलब क्या होता है? लक्ष्मीनारायण का कंबाइंड रूप। एक और मतलब होता है विष्णु का, विष्णु का मतलब होता है जिसकी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना हो, विष का एक अणु भी ना हो। विष का अणु प्रवृत्ति क्या मतलब? आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? मन बुद्धि संस्कार, तीन सूक्ष्म शक्तियां है ना। आपने वो कहावत सुनी है, वो जो है ना इसमें सुखमनी साहब में ना, मूत पलीती कपड़ धोए। शिव बाबा की महिमा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। तो शिव बाबा कौन से कपड़े धोता है? हा? आत्मा के कपड़े कितने? आत्मा के कपड़े, आत्मा के तीन कपड़े ना, मूत कौन से हैं? मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा उनको धोने के लिए आता ना, किससे धोता है? कौन सा डिटर्जेंट लेके आता है? ये मुरली लेके आता है ना, है ना? ये मुरली रूपी साबुन से क्या करता है? मुरली रूपी साबुन से, मुरली रूपी लक्ष्य सोप, मुरली जो है ना लक्ष्य सोप हमारा क्या है? ये मुरली ही ना। तो इस मुरली से ही हमारे हमारे जीवन को क्या करता है, एकदम हमारी बुद्धि को, मन को, संस्कार को साफ स्वच्छ बना देता है धोकर के। तो अभी हम इस बात पे गहराई से डिस्कस करते हैं, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात कि हम कैसे हम ब्रह्मा बाप समान बने, कैसे हम सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला संपूर्ण बने, संपूर्ण निर्विकारी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, अहिंसा परमो धर्म बने। और ब्रह्मा बाबा का लास्ट शब्द याद है? लास्ट के तीन शब्द याद है बाबा के? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो निराकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? निराकारी बनने के लिए पहले निराधार बनना पड़ेगा। निराकारी बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? निराधार बनना पड़ेगा। जब तक कोई ना कोई आधार है ना दुनिया में, तब तक हम निराकारी नहीं बन सकते। और बिना निराकारी बने हम निराकारी आत्मा बनके परमधाम घर में निराकारी बाप को याद नहीं कर सकते। और परमधाम घर में निराकारी बाप को याद के बगैर हम निर्विकारी नहीं बन सकते, तभी तो विकर्म भस्म होंगे, तभी तो निर्विकारी बनेंगे। और बिना निर्विकारी बने हम क्या नहीं बन सकते? निरहंकारी नहीं बन सकते। तो ये जो है सारा काम जो है हमें इस तरह से करना पड़ेगा। जो बाबा देखो बाबा निराधार बन गए ना एकदम से, नहीं बने निराधार, देख आधार ले लिए छोड़ दिया। अभी तो मैं सोफे के पीछे आधार लेके बैठा हूं ना, ब्रह्मा बाबा सीधे ऐसे बैठते थे है ना, अंत तक ऐसे बैठते सीधे एकदम बिना आधार के है ना। जैसे आप सब कुर्सी का आधार लेके बैठे ना, कमर लगा के बैठे हो है ना, तो बाबा एकदम सीधे बैठते थे, कभी बाबा को ऐसे नहीं देखा कैसे करके बैठे हो, कुर्सी पे सीधे अलर्ट होके बैठते थे ना। तो बाबा जो है हमेशा एकदम निराधार, देह का आधार छोड़ दिया, देह के संबंध संपर्क का आधार छोड़ दिया, देह के पदार्थों का आधार छोड़ दिया, देह के स्वभाव संस्कार का आधार छोड़ दिया। ये चार ही आधार है, चार बातों से न्यारे हो गए। अगर चार बातों से न्यारे बने, संदेह की जो मुरली है उससे न्यारे बन गए, तो हम क्या बन जाएंगे, निराकारी बन जाएंगे। निराकारी बनकर के जब अशरीरी बनकर के हम परमधाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड होते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। सूक्ष्म वतन में हमारे विक्रम विनाश होते हैं, सूक्ष्म वतन बाबा की गोद में हम हैं, बाबा के पास बैठे हैं, हमारे विक्रम विनाश होते हैं, उसमें हमारे विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम होते नहीं है पर विक्रम विनाश नहीं होते, ठीक है। और फिर तो परम धाम में ही सिर्फ हमारे विक्रम विनाश होते हैं, और फिर हमारा निरहंकारी, क्योंकि हमें जब योग, हम जब ज्ञान में प्रवीण हो जाते हैं ना, इसका भी अहंकार हो जाता है, योग लगने लगता है तो उसका भी अहंकार हो जाता है, नहीं होता है? हमने दो महीने से गुस्सा नहीं किया, इसका भी अहंकार हो जाएगा, नहीं? हम रोज अमृत वेला करते हैं, इसका भी अहंकार हो जाता है, हम मुरली कभी मिस नहीं की, इसका भी अहंकार हो जाता है, हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, ये अहंकार हो जाता है, मैंने इतने स्टूडेंट बनाए, ये भी अहंकार हो जाता है, नहीं? मेरे को कोई लोभ नहीं है, ये भी अहंकार हो जाता है, मेरे को किसी से मोह नहीं, ये भी अहंकार हो सकता है, नहीं हो सकता? मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, इसका भी अहंकार हो जाता है, नहीं? नहीं होता है? मैं बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता हूं, इसका भी अहंकार हो जाता है, मैं कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता हूं, इसका भी अहंकार हो जाता है, नहीं होता है क्या? तो लास्ट में निरहंकारी है ना, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार है वो योगी नहीं है ना, है ना? और जहां अहंकार है वहां बाप नहीं आ सकता है। तो चलिए हम चलते हैं, इसको समझते हुए चलते हैं, कैसे हम इसको प्रैक्टिस को करें, है ना? देखिए सबसे पहली बात जो है, मैंने जो समझी है, ब्रह्मा बाबा को किससे प्यार था? मुरली से प्यार था ना? ब्रह्मा बाबा सुबह से ही देखो, सुबह सुबह उठते थे ना, रात में भी बाबा से जो बाबा शिव बाबा उनके द्वारा जो पहले तो बाबा लिखते थे मुरली ना, पहले मुरली सुनाते नहीं थे, शुरू में 36-37 जब बाबा का शुरू हुआ तो बाबा मुरली लिखते थे कागज पे, 25-25 पेज लिख देते थे, 20-20 पेज लिख देते थे कागज ना, और फिर दादी जो थी ना, दादियां जो थी वो मम्मा स्पेशली, उसके आधार पे एक मुरली तैयार करती थी और फिर वो मुरली पढ़ के सुनाती थी। फिर तो बाद में फिर बाबा ने मुरली सुनाना शुरू किया है ना, बाद में स्पेशली यहां आने के बाद है ना, यहां आने के बाद मतलब यहां कमाने के बाद 1950 के बाद है ना, तब से दादियां कहती, तब से मतलब रेगुलर बाबा ने मुरली सुनानी शुरू की। उसके पहले बाबा ज्यादा फोकस करते थे लिखने पर है ना, तो तब मम्मा ही सुनाती थी ना? तो बाबा ने मुरली जो थी, बाबा को इतना था कि बाबा जैसे बाबा कई बार बोलते थे ना, जैसे दादी कहती बाबा चलो आप में चलते हैं, बाबा वो करें नहीं बच्ची तो जाओ मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर रहा हूं, बाबा विचार सागर मंथन करते थे, बाबा को जो टचिंग जाती थी, बाबा से जो होता था, फिर बाबा उस पर विचार सागर मंथन करते थे। तो अगर हम देखें गहरा समझ लें इस बात को कि हमारा जो चेतना है, जो बुद्धि है ना, हमारे अंदर एक बुद्धि है, एक मन है, आत्मा के दो मुख्य शक्तियां कौन सी है, बुद्धि और मन ना। अब जैसे मुझे लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, नर से नारायण बनना है ना, अब मुझे समान डिफरेंस है ना, लक्षण है क्या मेरे अंदर, नारायण के लक्षण है क्या, सर्वगुण संपन्न बना हूं क्या, 16 कला संपूर्ण बना हो क्या, देखो 36 गुण है, 36 गुण चेक करो, मेरे अंदर 36 गुण आए हैं क्या, एक एक गुण में 16 कला का मतलब मैं 100% बना हूं एक गुण में, 100% माना जैसे आपको सहनशीलता का गुण है, सरलता का गुण है, कि आप इतने सरल बने हो, इतने मधुर बने हो, सामने वाला गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो भी आप मिठाई बोलते रहो, ऐसा है क्या, कि 10 बार तो उसने कड़वा बोला, खराब बोला तो आप तो मीठा बोल रहे हो, ये तो 11वीं बार बोला था, अभी पारा ऊपर हो गया ना, अभी कहते बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ अभी और नहीं सुनूंगा मैंने, तो 100% हुए क्या हम? तो मधुरता इतनी कि मधुरता का मतलब इतना हम मधुरता इतनी हो जाए कि कोई कुछ भी करे, सहनशीलता इतनी हो जाए कि कोई कुछ कितना भी तंग करे है ना, कुछ भी करे हमें सहन कर ले, 100% हो जाए, कला के माफिक हो जाए, हमारा एक एक गुण 100% होना, हमारा हर गुण कला के माफिक, ऐसे नहीं कि 16 कला होती है, खाना बनाने की कला, डांस करने की कला, ऐसे कला नहीं होती है, हर गुण में 100% होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं 16 कला, वो कला के माफिक हो जाता है गुण, हर गुण अपने आप में 100% लगता है कला के माफिक, कहते हैं उसको कुछ होता ही नहीं है, परफेक्शन आ जाती है 100%, और उस गुणों में जब 14 कला हो जाते हैं, उसकी परसेंटेज कम 75% हो गए, तो फिर त्रेतायुग शुरू हो जाता है। तो जो हमारी बुद्धि है, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो दिल है ना, बाबा कहां पे आता है, बाबा हमें क्या कहता है, हमारे दिल पे आकर के हमें जो चेतना है ना, बुद्धि है, बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, एक है दिल, पहला जिसे चेतना कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, और दिल कहते हैं। अब सारा जो लक्ष्य और लक्षण में समानता किस आधार पर होती है, लक्ष्य और लक्षण में समानता किस आधार पर है कि मेरे दिल में क्या है, अगर मेरे दिल में चेतना में या कॉन्शियस सत्य है ना, तो ऑटोमेटिक मेरा चित्त जो है शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है। तो बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, जैसे अगर हम एक तो पुरुषार्थ हमारा के लगे रहे, जो आप सबने देखा होगा, आप मुरली सुबह सुनते हो, पढ़ते भी हो, कि तो फिर भी चिंतन क्या चलता है आपका, मुरली का चिंतन चलता है क्या, चलता है मुरली का चिंतन, बैठे बैठे अभी खाली बैठे हो, खड़े हो सड़क पे, ऐसे ही कोने में खड़े, धूप में खड़े हो, क्या चिंतन चल रहा है, किसान आंदोलन का क्या होगा, मोदी का क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना, नहीं, सर्दी तो जा रही है, अभी गर्मी आने वाली है, ये चिंतन है क्या, इससे कहां पहुंचोगे, शहीद नारायण बनेंगे, क्या बनेंगे बताओ, तो चिंतन क्यों नहीं हमारा चलता है, जबकि बाबा ने कहा ये जो बाबा की मुरली है इसका चिंतन चलना चाहिए, है ना। योग क्या है, ज्ञान और योग में क्या फर्क है, ज्ञान माना समझ, और योग माना उस समझ को जीवन में प्रैक्टिकल लाना, है ना? जैसे आज की मुरली में कहा यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है, आत्मा गुप्त है, परमात्मा गुप्त है, आत्मा परमात्मा का संबंध गुप्त है, और हमारा याद भी गुप्त है, और प्राप्ति वो भी गुप्त है, चेहरे पे थोड़ा दिखाई देती है कि मैं योग कर रहा हूं तो मेरे धारणा आ गई तो मेरे चेहरे पे कुछ चमक आ जाएगी, या मेरे चेहरे पे कुछ ऐसा कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, या मेरा काले से गोरा रंग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं होगा, या मेरे कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, गुप्त है ना बिल्कुल, हम सिंपल है, सिंपल इंसान है बिल्कुल ही, और हमारे देख के कोई कह सकता है कि हम देवता है, नहीं, या देवता बनने वाले, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा जो बिल्कुल सब कुछ गुप्त है, प्राप्ति भी गुप्त है, तो हमारा सारा कुछ गुप्त है, हमें कोई ये भी नहीं कि सुबह सुबह उठ के तिलक लगाना, ऐसा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई हाथ भी जोड़ने नहीं है, तो हमारा सब कुछ गुप्त है। तो हमें जो है अभी क्या करने का है, जैसे मुरली हमारे अंदर चलनी चाहिए ना, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है, कौन सी मेहनत करनी है, 5 विकार को छोड़ने की मेहनत करनी है। आज का वरदान क्या था, अतिंद्रिय सुख, त्रिकालदर्शी स्थिति से अतिंद्रिय सुख का अनुभव, देवताओं को अतिंद्रिय सुख का अनुभव होता है क्या, होता है देवताओं को, मनुष्यों को होता है, किसको होता है, सिर्फ ब्राह्मणों को हो सकता है ना। तो ऐसा मेरे अंदर ये बजना चाहिए ना, अंदर से मुरली माना बजने की चीज है ना, तो क्यों नहीं बजती है, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरी जो चेतना है, दिल है, उसमें अभी तक देहभान है, उसमें देह का भान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, देह के पदार्थों का भान है, देह के स्वभाव संस्कार का भान है, जो मेरे दिल में होता है ना, वही मुझे उसका ही चिंतन चलता है। दिल में जो है ना, दिल में अगर मेरे ये आ जाए, इसलिए बाबा कहता है अपने दिल को पहले खाली करो, दिल को सच्चा और साफ करो, दिल सच्ची और साफ, अगर मेरे दिल में थोड़ा भी देह भान है तो मेरा दिल सच्ची नहीं है, थोड़ा भी देह भान है, मैं इवन इतना भी है, मैं सतीश गुप्ता हूं तो ये देह भान है ना, मैं डॉक्टर हूं तो रोल कॉन्शियसनेस है ना, ये भी देह भान, देह का अभिमान है ना। तो इवन थोड़ा सा भी आए कि हम उस परिवार के हैं तो ये भी देह का अभिमान है। तो हमको बहुत सूक्ष्मता से चेक करना है कि मेरे दिल में क्या है। मैं आत्मा हूं, शरीर का नाम सतीश गुप्ता है, मेरा प्रोफेशन जो है डॉक्टर का है। ये अंदर से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, तो इस तरह से, और मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, बाबा के साथ है, और ये जो मेरी ड्यूटी है, मेरे संबंध है, ये क्या है, ये संबंध है कि बंधन है? संबंध है, बंधन है, बंधन है, फर्ज है, ड्यूटी है। जिनसे मैंने पिछले जन्म में कुछ लिया दिया है वो मेरे साथ, मेरी पत्नी के रूप में, मेरे पति के रूप में, मेरे बच्चों के रूप में, मेरे माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, दोस्तों के रूप में, बॉस के रूप में, सबॉर्डिनेट के रूप में, मेरे कुलीग्स के रूप में मेरे साथ है, राइट? उनसे मुझे जो लिया दिया पिछले जन्म का वो हिसाब किताब चुकतू करना है। कहां से चुकतू करेंगे? उससे लेंगे तो इसको देंगे ना, नहीं तो हम आपस में क्या देते हैं दूसरे को, दुनिया में एक दूसरे को क्या देते हैं? विकार देते हैं ना, काम विकार देते हैं, क्रोध देते हैं, लोभ देते हैं, मोह देते हैं, अहंकार देते हैं, आलस देते हैं, अलबेलापन देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, बदलने की भावना देते हैं, शक अनुमान देते हैं, चिंता भय देते हैं, जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष देते हैं, नहीं? यही तो धंधा करते हैं। उससे हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज, उनके भी बैटरी डिस्चार्ज, नहीं ऐसा करते। अभी बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा बच्चे अपने दिल में सत्य को रखो। सत्य क्या है? सत्य ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, अविनाशी, अनचेंजेबल होता है। हमने दिल में क्या रखा है? विनाशी चीजों को रखा है। देह विनाशी है, देह के संबंध संपर्क विनाशी है, विनाशी है, अविनाशी है, ठीक है ना। देखे पदार्थ आ जाएंगे और पहले नहीं थे, अब आए फिर चले जाएंगे, है ना। संस्कार जो पहले अब आए फिर चले जाएंगे, वो भी विनाशी है। तो हमें दिल को पहले चेक करना है, मेरे दिल में क्या है, अपनी चेतना में क्या है, ये बुद्धि का एस्पेक्ट है पहला दिल। तो दिल में चेक करके निकालो, सबको निकालो, जो चीज विनाशी है उसको निकाल दो और जो अविनाशी है उसको रखो। सत्य ज्ञान जो है विनाशी है, ABCD अविनाशी है, आत्मा बाबा कनेक्शन माने संबंध, डिफॉल्ट ड्रामा, जो हुआ ड्रामा अविनाशी है, बना बनाया है, कभी विनाश नहीं होता है। तो जितना दिल में हम सत्य को रखेंगे उससे क्या होगा, उससे मेरा क्या होगा, विवेक, सत्य को परखने की शक्ति। सत्य को परखने की शक्ति किसके आधार पर बनती है? सत्य के आधार पर। अगर मेरे दिल में सत्य होगा तो जितना मैं इसका मनन चिंतन मंथन करता हूं, स्मरण करता हूं, एक एक मुरली के एक लाइन का अनुभव करता हूं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, इवन इस गीत का भी मैं मनन चिंतन करता हूं, मनन माना रिवाइज करता हूं बार बार, चिंतन माना गहराई में जाता हूं, मंथन माना मैं बाबा से पूछता हूं, बाबा इसका क्या मतलब है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो बाबा से इसका एक लगन की अग्नि जागृत हो जाती है, तो बाबा समझाता भाई तुम्हें पाके, आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, माना सातों एनर्जी को पा लिया, सात एनर्जी का पावर हाउस है मेरे पास, तमो प्रधान, सतो माना सात, सात से भरपूर, और मैं क्या हूं, तमो प्रधान, अंधेरे से भरपूर, है ना। तो मैंने अगर तुमको पा लिया तो क्या हुआ, सातों एनर्जी मेरे पास आ गई, तो क्या हो, जहां मेरा हो गया, जहां माना सारी दुनिया माना, अब मैं सारी दुनिया से कैसे रहता हूं, मिलजुल के रहता हूं, शांति से रहता हूं, पवित्र रहता हूं, शांति से रहता हूं, खुश रहता हूं, है ना, आनंद में रहता हूं, शक्तियां मेरे पास है, तो सारा जहां मेरा हो गया। प्रथम प्रधान का सारा जहां मुझे मेरे लिए बेकार है, अंधेरा ही अंधेरा, कभी इससे टक्कर खाता हूं, कभी उससे टक्कर खाता हूं, कभी अंधेरे में क्या होता है, झगड़ा ही होता है, टेंशन ही होती है, चोट लगती है ना। तो मैं अभी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, तो ऑटोमेटिक जब इतना हम सत्य के साथ, बाबा के साथ मनन चिंतन, इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते, ज्ञान स्वरूप स्थिति का अर्थ क्या है, ज्ञान स्वरूप स्थिति का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है, वो है अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप की अनुभव में रहना। ज्ञान तो ये मुरली है, कि तो इसका स्वरूप बनने के लिए क्या क्या हो, किसका स्वरूप क्या होगा, चलते फिरते उठते बैठते मुझे क्या अनुभव रहेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा को रहता था, क्या अनुभव रहता था, कि मैं अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप अशरीर रूप याद रहता था और अपना देवी देवता स्वरूप याद रहता था, बुद्धि में रहता था अपना परंधाम में बाबा से कंबाइंड, और मन में क्या रहता था, लक्ष्य मन, मन लक्ष्य पे लगा रहता था मन में कि मुझे श्री नारायण बनना है, तो मन में मेरे ये भरा रहता था। तो ये जो है मेरा स्वरूप था, ये है हमारा ज्ञान स्वरूप स्थिति। और जितना हम इस ज्ञान को और गहराई से अनुभव करते जाते है ना, पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य को समझ जाओ गहराई से। चार सातों जो चैप्टर है, 7 दिन का कोर्स है, गहराई से समझ लो। अगर पहले किया है नहीं, दोबारा करो, ठीक है, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, पांचवी बार, मैं तो 150 बार किया है अभी तक ना कोर्स। जो हार्ट के प्रोग्राम अभी 170 के आसपास हार्ट के प्रोग्राम हुए ना, हर हार्ट के प्रोग्राम में कोर्स होता है ना, 7 दिन का कोर्स होता है, तो मैं तो हर कोर्स को बैठ के सुनता हूँ बड़े ध्यान से। और मुझे हर बार जैसे मुरली नई लगती है, ऐसे हर बार कोर्स भी नया लगता है, कुछ ना कुछ नई बात अंदर जाती है। तो उसको हम गहराई से अनुभव करें, और जितना हम गहराई से, ये थोड़ा ऑफ कर देना प्लीज, ये ना सुनो, ये पीछे से ना ये ऑफ कर दीजिए प्लीज, ये हीटर ऑफ कर दीजिए कोई भाई, हीटर ऑफ कर दीजिए। तो जितना हम इसकी अनुभूति में इसको बार बार रियलाइज करते हैं ना गहराई से, रियलाइज माने महसूस करते हैं, चलते फिरते महसूस करते हैं मैं कौन हूं। एक एक संबंध को बाप से, बाप के साथ हमारे मुख्य 9 संबंध है, कौन कौन से, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन, ये मुख्य बच्चा, मुख्य 9 संबंध बाप के साथ अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं पहले तो, है ना। और महसूस करके फिर क्या हम करते हैं, फिर जब महसूस करते हैं तो फिर बार बार उसका अनुभव होने लगता है। पहले महसूस करना माना रियलाइज करने का मतलब बेसिक एक्सपेरिमेंट करना। सपोज मुझे कोई किसी व्यक्ति से मिलना है और मुझे उसके पास मिलने से डर लगता है, मैं बाप को अपनी माँ, जैसे माँ छोटा बच्चा होता है ना, माँ के साथ डर नहीं लगता है, बाप के साथ डर नहीं लगता है, तो मैं बाबा को अपने माँ बाप बना के साथ में रखता हूँ, कंबाइंड रखता हूँ। माँ के रूप में बाबा ने मुझे क्या दिया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी, मैं दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट से सूक्ष्म वेतन में एकदम पहुंच जाता हूँ बाबा के पास। वहां बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ बैठा हुआ है, मैं उसको भी सम्माइंड करता हूँ। अब मैं किसी से बात करता हूँ, बाप के रूप में बाबा ने क्या दिया, शिव बाबा ने बाप के रूप, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाप के रूप में क्या दिया, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया। अब टीचर के रूप में क्या दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, सुदर्शन चक्र था, टीचर है ना, सुदर्शन सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान दे दिया। और सतगुरु के रूप में क्या दिया, सतगुरु में वरदान, किस बात का वरदान दिया, जब चाहे सूक्ष्म वतन में आओ, जब चाहे परम धाम में जाओ, जब चाहे सुख धाम में जाओ, मल्टीपल एंट्री वीजा दे दिया, जब चाहे, कोई रोकने वाला नहीं है, बाकी लोग जा नहीं सकते हैं, कोई मनुष्य जा सकता है, मैं जा सकता हूँ, जा सकते हो ना, मल्टीपल एंट्री, पुलिस वाला नहीं खड़ा है वहां पे, है ना, कोई रोकने वाला नहीं खड़ा, आप एकदम जा, सूक्ष्म वतन में जा सकते हो, परम धाम में जा सकते हो, और बीच बीच सुख धाम हमेशा नहीं, कभी कभी जा सकते हो। और इसके अलावा फिर इसके बाद संबंध है, पहले माँ का संबंध अनुभव कर लो, दिव्य बुद्धि को यूज करो, दिव्य बुद्धि को बार बार यूज करो, दिव्य बुद्धि को यूज करके अपने पहले तो बुद्धि को शुद्ध बनाओ। आपके पास दोनों बुद्धि है, दिव्य बुद्धि भी आसुरी बुद्धि भी है, तमो प्रधान बुद्धि भी है, तो सारा टाइम दिव्य बुद्धि को यूज करो। कई लोग क्या करते हैं, पुरानी तो दिव्य बुद्धि है पर फिर भी आसुरी बुद्धि को यूज करते रहते हैं। देखो दिव्य को धीरे धीरे आसुरी बुद्धि खत्म हो जाती है, और फिर उस दिव्य बुद्धि से फिर आप क्या करो, मन को परिवर्तन करो। ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है, ब्राह्मणा बेहद, बेहद की बुद्धि वाले, मन, मन मना मनमराभाव होने वाले, मन के हर विचार भावना वृत्ति और स्मृति में क्या भर देने वाले, ए मुरली भर देने वाले, ABCD भर देने वाले, और मनमना वह होके क्या बनने वाले, मध्याजी बनने वाले, मध्याजी माना मध्याजी, देहबान से परे, न मेल ना फीमेल, मेल ना फीमेल क्या होते हैं, फरिश्ते, फरिश्ता मेल होता है फीमेल होता है, फरिश्ता है ना, और फरिश्ता सो देवता माना विष्णु, विष्णु माना जिसकी जिसकी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना हो, मतलब मेरी बुद्धि संस्कार में विष का एक किसी विकार का अंश भी ना रहे, निर्विकारी। तो इसमें क्या समाया, ब्राह्मण शब्द में सारा समाया, नहीं समाया, बेहद की बुद्धि, ये मनुष्य की बुद्धि कैसे होती है, हद की, और मनुष्य ब्राह्मण में क्या, ब्राह्मण में बेहद की बुद्धि, बेहद की बुद्धि माना बेहद, आत्मा हद है बेहद है, बेहद परमात्मा हद है बेहद है, बेहद आत्मा परमात्मा का संबंध हद है बेहद है, बेहद है रामा के हद है बेहद है। तो बुद्धि में जिसके सारा टाइम एबीसीडी, सारा दिन मुरली घूमती रहे, सारा दिन वरदान घूमता रहे, सारा दिन स्लोगन घूमता रहे, मुरली के एक एक पॉइंट अंदर घूमती रहे। कई लोग कहते हैं मैं योग नहीं रखता है, अरे मुरली का तुम एक एक पॉइंट का अनुभव करो। मैं तो कई बार जैसे मैं वॉकिंग करता हूं ना, तो मुरली के एक एक लाइन को अनुभव करता हूं, और इसी में मेरी 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक हो जाती है, और 45 मिनट्स मुझे कुछ बात का ध्यान नहीं होता आसपास क्या हो रहा है। अब अगर 45 मिनट योग हो जाता, शाम को आधा घंटा वॉकिंग करता हूं, आधा घंटा मुरली के एक एक पॉइंट का अनुभव करता रहता हूं, वो योग हो जाता। मुरली के एक एक पॉइंट का अनुभव करना ही योग है। मुरली का रिवाइज करो, चिंतन गहराई में जाओ, मंथन करो और गहराई में जाओ, और फिर जो मक्खन निकला ना उसको सिमरन में कार्य में लगाओ। कार्य करते समय बाबा याद रहे, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये मक्खन मेरे को निकाल के दिया। जैसे मुझे याद आता है बाबा ने एक बार कहा था, बाबा स्वीट का पहाड़ है, याद है एक मुरली थी, बाबा स्वीट का पहाड़ है, तुम कौन हो, तुम स्वीटेस्ट बाप के स्वीट बच्चे हो। मैंने उस पर चिंतन करना शुरू किया, बाबा मेरा स्वीट का पहाड़, बाबा स्वीट क्या होता है, चिंतन किया, बाबा मुझे भी स्वीट बनना है, मुझे भी स्वीटेस्ट बनना है। तो बाबा ने कहा बच्चे स्वीट का पहाड़ माना सातों गुणों का सागर, और स्वीटेस्ट माना सत्व प्रधान। जिसके अंदर सात गुणों में भरपूर सत्व प्रधान है वही तो मीठा रहेगा, वही तो मीठा बनेगा। बाबा मिठास का सागर है, क्योंकि सात गुणों से ही मिठास बनती है, व्यवहार में मिठास आती है ना। तो ऐसे अपने अंदर जो जो चीज का भी करते जाओ। जैसे आज का अतिंद्रिय सुख का मैंने सोचा, अतिंद्रिय सुख के ऊपर मैं कर रहा था कि अतिंद्रिय सुख है क्या, यहाँ पर अल्पकाल का सुख है, यहाँ पर हमें चीजें मिली, पैसा मिला, कार मिली, टेलीफोन मोबाइल बहुत अच्छा मिला, आईफोन मिला, सुख है किसका, अल्पकाल का सुख है। टाइम खाएगा है ना, कितना टाइम लगेगा, कितना बिल आएगा, फिर दुख ही दुख है ना, उसकी मेंटेनेंस, उसकी चार्ज करो, कितना दुख परेशानी होगी ना। किंतु वहां पर कैसा है, अल्पकाल का नहीं है, वहां अविनाशी सुख है। सत्युग और अभी के सुख में क्या फर्क है, कि तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति यहां पर है। अतिंद्रिय सुख का मतलब क्या है, जितना हम ज्ञान को घूटते जाएंगे हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता का मतलब क्या है, मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप मुझे अनुभव हो रहा है आदि देवता स्वरूप, अब मुझे कभी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप अनुभव होना शुरू हो गया तो पवित्रता आ गई। मुझे स्मृति इमर्ज हो गई, आप भी तो वही हैं, आप भी सत्युग में जाने वाले, मैं भी सत्युग में जाने वाला हूं, कभी अनादि, आप भी परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप है। जब सत्युग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, तो भी आपका कौन सा स्वरूप है, पावन सत्व प्रधान स्वरूप है। द्वापर में भी जब आत्मा उतरेगी तो पहले क्या होगी, पावन सत्व प्रधान होगी। कलयुग में भी आत्मा जब पहली बार उतरती है तो कौन सी होती है, सत्व प्रधान होती है, नहीं होती है। ऊपर से तमो प्रधान आत्मा थोड़ी उतरती है, शुरू में सत्व प्रधान ही उतरती है। तो हर आत्मा से शुरू में सत्व प्रधान ही उतरती है ना, आपका स्वरूप में कौन सा देख रहा हूं, देवता स्वरूप। तो ये पवित्रता, ये है पवित्रता, इसमें ना लगाव है, ना झुकाव है, ना प्रभाव है, ना टकराव है, इसी बात में क्या क्यों कैसे भी नहीं है। वैध संकल्प आना भी पवित्रता, और मैं निराकार भाव से निराकार भाव आत्मा का, मैं आत्मा निराकार या आत्मा निराकार भाव से कंबाइंड हूं, और जब निराकार भाव से कंबाइंड हूं अब मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकती हूं, बिना भाव से कंबाइंड हूं ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये पवित्रता है। अगर ऐसी पवित्रता आ गई तो क्या हुआ, अब मैं आत्मा क्या कर सकती हूं, अब मैं थोड़ी पवित्रता का डिग्री आई ना, 5% पवित्रता आई, अब मैं आत्मा 5% समय तो, क्योंकि बाबा को मैं पवित्र आत्मा ही बाबा से कनेक्ट कर सकती है। बाप क्या ऐसा सोचता है, अब ऐसा सोचता बाप से जब मैं पवित्र आई, अब मैं सोचता बाप से कंबाइंड हो जाती हूँ, ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड होकर सोचती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, बोलती हूँ, खाती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, लोगों से संबंध संपर्क व्यवहार में आती हूँ, तो क्या हुआ, पास का चिंतन खत्म हो गया, भविष्य की चिंता खत्म हो गई, है ना। जब मैं असुचता बाप से कंबाइंड हुई तो पास का चिंतन खत्म, पास में क्या क्या हुआ मेरे को स्मृति से निकल, जैसे ब्रह्मा, जैसे शिव बाबा को कभी पास का चिंतन चलता है क्या, भविष्य की चिंता कभी नहीं होती, ब्रह्मा बाबा को होती क्या, नहीं होती। ऐसे ही मेरा बाप ऐसा सोचता है तो मेरे को भी पास का चिंतन खत्म, भविष्य, मैं वर्तमान में 90% विचार कहां से आते हैं, पास से आते हैं, पास के साइकोलॉजिकल इमोशनल से आते हैं, और भविष्य की इनसिक्योरिटी से आते हैं। 90% विचार कर गए, 30 विचार पहले एक मिनट में आते, अब कितने हो गए, 3 विचार, एबीसी, आत्मा बाबा संबंध इसमें खो गया, तो शांति आ गई। शांति आई तो क्या हुआ, मैं बाबा के साथ रहता हूं अधिकतर, बाबा से वास्तविक वेरीफाई करा लेता हूं, तो क्या होता है, देखो देखता हूं बाबा सबको स्वीकार करता है, यज्ञ में भी सबको स्वीकार करता है, कोई बाबा के श्रीमत पे चले ना चले, अमृत वेड़ा करे ना करे, मुरली सुने ना सुने, बाबा उसको हवा पानी दे रहा नहीं दे रहा, खाना पीना दे रहा नहीं दे रहा, आतंकवादी को भी हवा पानी देता नहीं देता, नहीं देता, सबको दे रहा है, सबको स्वीकार कर रहा है, जो भी एग्जाम दे रहा है। ये थोड़े ना बाबा के बच्चे एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिशन, उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो नॉन वीक के हैं वो जो एग्जाम देते हैं पढ़ते हैं खूब दिन रात तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा होता है क्या? अगर बाबा का बच्चा है और पढ़ता नहीं है तो फिर उसका सिलेक्शन होगा क्या? बाबा सबको स्वीकार कर रहा है बिना किसी शर्त के, बीके नॉन बीके की शर्त भी नहीं लगाई उसने, सबको सबको स्वीकार कर, सबको पालना दे रहा है बिना किसी शर्त के, सम्मान से दे रहा है, दिल से दे रहा है। तो ये अनकंडीशनल प्यार है, तो ये प्यार हो गया। तो ये जो है चार चीजें आप आपने प्राप्त कर ली ना, अपने अनादि ज्योति बिंदु से पारी देता स्वरूप की अनुभूति हो गई, तो आप संतुष्ट हो गए, स्वयं से संतुष्ट सर्टिफिकेट मिल गया। और अगर आपको पवित्रता आ गई तो बाप संतुष्ट हो गया, अगर आप शांति आ गई तो ड्रामा संतुष्ट हो गया, और आपने सबको स्वीकार कर लिया तो परिवार संतुष्ट हो गया। चार सर्टिफिकेट मिले ना, तो अब आप अतिद्रिय सुख की अनुभूति में चले, अब आप सुख, आपका मन और बुद्धि हल्का हो गया, डबल लाइट हो गया, आत्मा लाइट हो गई और साथ में सारे बोझ भी लाइट हो गए, और आप आत्मा डबल लाइट बन के कहां पहुंच गए? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि और मन को लाइट बनाया, बुद्धि में सात एनर्जी भर दी, संस्कार भी आदत भी डाल दी वही। अब बाबा का क्या सूक्ष्म शरीर क्या बन गया? लाइट का बन गया। सूक्ष्म शरीर बेसिकली क्या? कुछ और नहीं है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, मन सूक्ष्म शरीर है लाइट का, उसमें ज्ञान भर गया, पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियां भर गई, लाइट का शरीर बन गया, और संस्कार उसकी ड्रेस है। ब्रह्मा बाबा की ड्रेस क्या है? संस्कार, दैवी संस्कार बाबा के बन गए, तो लाइट चमकीली ड्रेस बन गई। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जब संपूर्ण हो गया तो ये पुरानी देह छोड़ दी और सूक्ष्म अवतार माना शिव बाबा के दिल तक, दिल में जाके बैठ गया। आज्ञाकारी बच्चे कहां बैठते हैं? माँ बाप के दिल में बैठे होते हैं, नहीं? आपका बच्चा आज्ञाकारी है तो आप कहां रहता है? आपके तो है ना, माँ के बाप के दिल में रहता है, कोई दिल को स्थूल जंगे है क्या? तो शिव बाबा जाके, ब्रह्मा बाबा दिल, शिव बाबा के दिल, सबसे पहला नंबर बच्चा आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चा शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया, दिल तक पे जाके बैठ गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का दिल सच्ची साफ थी, शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। तो ये ब्रह्मा बाबा पहला बच्चा था जिसकी जिसको शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया और शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया, है ना? तो बाप के दिल में बच्चा और बच्चे के दिल में बाप, तो ये क्या बन गया? ये है सूक्ष्म वतन। अब ब्रह्मा बाबा ने जो किया मुझे भी वैसे करना है, मुझे सूक्ष्म वतन में जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी अपनी बुद्धि मन और संस्कार को क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? चार सर्टिफिकेट लिए ना, अब चार सर्टिफिकेट मिल गए ना, स्वयं से, बाप से और ड्रामा से और परिवार से। अब मैं बाप दादा की गोद में पहुंच गया अपने लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ। अब रियल में देखो तो आप शिव बाबा कौन है? सागर है, ज्ञान का, पवित्रता शांति प्रेम का सागर है। तो और ब्रह्मा बाबा का शरीर कैसा? लाइट का बना हुआ, वो भी सातों से भरा हुआ है। एक्चुअली आप कहां जाके बैठे? अपनी बुद्धि और मन के साथ सागर में जाके बैठ गए, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम सुख आनंद शक्ति के सागर में। अपने आप को इमेजिन नहीं करो, विजुलाइज नहीं करो, रियल में प्रैक्टिकल में अनुभव करो। सूक्ष्म वतन में आज्ञाकारी वफादार बनोगे, ईमानदार बनोगे, तो बाबा की गोद का रियल में अनुभव होगा, जब चाहे तब अनुभव होगा। नहीं तो आप करते हो ना, इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, कभी होता है कभी नहीं होता। आज्ञाकारी बच्चों को क्या करना पड़ता है? सहज आराम से पहुंच जाता है, जब चाहे चलते फिरते भी पहुंच जाएगा, कहीं भी, खाना खाते खाते भी सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे खिला रहे, मैं बाबा की गोद में खा रहा हूं, पैदल कर रहे हैं बाबा की गोद में, मैं पैदल कर रहा हूं, तो ये बाबा मेरे साथ पैदल कर रहे हैं। तो हर संबंध की अनुभूति बाबा के साथ करते हुए रहना, जैसे जैसे हम करेंगे अतिद्र सुख की अनुभूति, आज की था अतिद्र सुख की अनुभूति, एक बार अतिद्र सुख की अनुभूति होगी तो आपको कभी भी कोई आकर्षण नहीं खींच सकती है, किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। और जब इच्छा, जब संतुष्टता आ गई कंप्लीट, इच्छा मात्र में विद्या हो जाएगी, आनंद की अनुभूति हो जाएगी, शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप क्या बनते जाएंगे? धीरे धीरे ज्ञान की अथॉरिटी बनते जाएंगे, पवित्रता की अथॉरिटी बन, पवित्रता का अनुभव हो जाएगा ना, अथॉरिटी बन जाएंगे आप, शांति के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, आनंद के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, एक एक शक्ति के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। और अथॉरिटी बन गए, जैसे ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी बने, ऐसे जब हम अथॉरिटी बन जाएंगे तो हमारे लक्षण ऑटोमेटिक कैसे बनते जाएंगे? बाप समान बनते जाएंगे। और जब हमारे ऐसे विक्रम विनाश होते जाएंगे, विक्रम विनाश कैसे होते जाएंगे? देखो हमारी रिटर्न जर्नी, अभी रिटर्न जर्नी ना, पहले हमारा 84वां जन्म है ना। अब बाबा का बनने के बाद हमने पाप किए, सबसे पहले तो वो पाप किए हुए, वो खत्म करने पड़ेंगे। अब पाप कहां किए, सबकॉन्शियस माइंड में। इस जन्म के पाप कहां है, सबकॉन्शियस माइंड में। और पिछले जन्मों के जो 62 जन्म के पाप है वो कहां है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, अचेतन मन में। तो अभी अभी जो मैंने पाप किए इस जन्म, वो पाप कैसे खत्म होंगे, जितना मैं इसका ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते थे, मेरे अंदर पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद आता जाएगा। मेरी क्रिया सत्य को प्रकट शक्ति एकदम एक्यूरेट होती जाएगी, निर्णय शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आती जाएगी, और फिर विस्तार को साधन मिले, मेरे विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो गई, और मेरा विस्तार को सार में लाने की शक्ति, कोई भी समस्या होगी ना एक सार में आ गई। देखिए दुनिया से हम मन बुद्धि को समेट सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समाये रहेंगे, और वहां से भी मन बुद्धि को बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाएगी, उसकी अंतिम बैटरी चार्ज होती रहेगी, अर्थात बिंदी लगाने की शक्ति आ जाएगी। जब बिंदी लगाने की शक्ति है, चयन करना चार्ज हो जाएगा। अब मेरे को हार्ट में दर्द हो रहा है, इटा कमर दर्द, इटा हो गई, मणके निकल गए, मणके घिस गए, अब तो बहुत है कि तू, जब मैं ऐसा बाबा से कनेक्ट होता हूं, बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड, इतना एंडोर्फिन निकलाता है अंदर से, दर्द की फील खत्म हो जाती है ना, दर्द की फीलिंग एकदम खत्म हो जाती है, दर्द महसूस नहीं होता, मैं चल सकता हूं, चल सकती हूं। क्या हुआ, विनाश हो गया। बिना ऐसा नहीं करो कि परम धाम तो बीमारी खत्म, ऐसा नहीं है। बाप के साथ अभव आगे जो भी तकलीफ कर्म भोग है, मुझे लोग सड़ते गाली देते हैं, मेरे को आस पड़ोस में मेरे को तंग करते हैं, मैं ठीक कर रहा हूं तो भी लोग सब मेरे रखते हैं, किंतु बाबा के साथ का अनुभव ऐसा वंडरफुल होता है, गाली किसी गाली लगती नहीं है, किसकी तंग करना लगता ही नहीं है, लगता है ये मेरे पर फूल चढ़ा रहे हैं, भी सुनती है, देखते भी दिखता नहीं है, ऐसा ऐसा महसूस ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि दूसरा क्या होता है, आपका स्वरूप ऐसा बन जाता है, लाइट का अवमंडल ऐसा बन जाता है, लोग दूर से भले कुछ मर्जी बोलते हैं, कुछ भी करें, आपके नजदीक आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, जैसे माँ बाबा के सामने शांत हो जाते हैं, आपके सामने बाकी शांत हो जाएंगे, इतना भी पड़ोस घर में माता पिता बहने कुछ भी कोई कुछ भी करे, आपको फील ही नहीं हो, और क्रम विनाश होंगे तो आपका आपके साथ उनका बदल जाएगा। तो जब सहन की शक्ति, समाने की शक्ति आएगी, बोलने को दिल नहीं करेगा मैं उसको बताऊं ऐसा हुआ ऐसा नहीं, और सामना और भी प्रॉब्लम आने के बाद सहयोग भी कर पाओगे, दूसरों की मदद भी करोगे, तो इससे आप हो रहे हैं। अब वही व्यक्ति बदल गया, फिर दूसरे मार्च हो जाए, 62वें जन्म का, फिर 63वें जन्म, फिर 61वें जन्म का, फिर 60वें जन्म का, कभी ऐसी रहेगी, कभी ऐसी रहेगी, कभी ऐसी, कभी वो तो होगा, तो आपको खबर नहीं होगी। जन्म के जब 21 जन्म तक पहुंच जाओगे, आप सारे विनाश जाएंगे, अब आपके रजो सतो स्टेज आ जाएगी, अच्छा लडल हो जाएगा आपकी स्थिति, अच्छा लडल हो जाएगी, अब सूक्ष्म वतनवासी बनकर रहोगे, क्योंकि मन बुद्धि शुद्ध हो गया, तो लाइफ आपका अभी 5% मन कॉन्शियस था, अभी क्या हो गया, धीरे धीरे 10% हुआ, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 51% जब कॉन्शियस है, अब 10% सूक्ष्म वतनवासी बन के बाबा के पास रहोगे, और फिर वहां से जब दाता विधाता वरदाता का पाठ मनसा सेवा करोगे दिन रात, फिर आप 100% मन कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि फरिश्तों का ना तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड भी नहीं होता, 100% मन कॉन्शियस होता है, इसलिए संकल्प सिद्ध हो रहा है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर पूरी होती है, तो जो करें सिद्ध हो जाते, देवताओं का भी ऐसे होता है, जब 52 साल से ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दाता विधाता वरदाता का पाठ निभा रहे है ना, तो शिव बाबा से कंबाइंड होकर ये काम कर, हमें भी क्या करना है, अब आखिरी समय पर अभी 1% की सेवा नहीं हुई है ना, 800 करोड़ लोग इतनी सेवा, तो अभी हमें इतनी सेवा नहीं, वो मनसा सेवा होगा, मनसा सेवा तब हो पाएगी जब 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी, तब हमारे ईस्ट का हम साक्षात्कार मुहूर्त बन जाएंगे, साक्षात मुहूर्त बन के साक्षात्कार, लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा, ठीक है। तो चेहरे से, चेहरा माना मन से, मन चेहरा पे जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है, और कर्म कर्मों से, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, चलना, कुछ करना, वो उससे हमारे क्या होगा, दैवी गुण प्रत्यक्ष होंगे, उससे जो है जीत, प्रकृति जीत, बाप दादा के साथ कल्पवृक्ष जड़ में बैठ के सारे कल्पवृक्ष को सुखाश देंगे, हमारे इष्ट देव का प्रत्यक्षता और बाबा का साक्षात्कार होता रहेगा, सब हमारे चेहरे से और चलन से, तो ऐसा जब हम करेंगे तो बाबा का कार्य पूरा होगा, ठीक है। और फिर हम बाबा के साथ अपने नंबर शास्त्र अनुसार बाप के साथ साथी बन के जाएंगे, आएंगे नंबर शास्त्र अनुसार, जैसे बाबा के साथ ही हम आएंगे, ठीक है, बाबा या साथ है, डिपेंडिंग ऑन हमारा पुरुषार्थ कैसा है, ठीक है। तो इसका सार क्या हुआ, बेसिकली मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओ, मुरली सत्य है, मुरली से मन बदलेगा, मुरली से ही मुरली साबुन है बुद्धि और मन को धोने का, तो मन साफ होता जाएगा, तो हमारा लाइफ का स्टाइल सूक्ष्म शरीर बन जाएगा, इसी हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, हमारी ड्रेस भी चमकीली बन जाएगी, हम सूक्ष्म तन में बैठ के जैसे ब्रह्मा बैठे, हम यहाँ रहते भी साकारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास करते करते बाबा का अपना करेंगे और फिर बाबा के साथ वापिस नई दुनिया में वापिस आएंगे। इस तरह से हमारे लक्षण लक्षण भी हमारा अभी हमको बाप के साथ रहने का अनुग्रह मांगेगा तब हम बाप बनाएंगे। ओम चल दो मिनट चलिए पावरफुल याद, बस इसके लिए यही बात ध्यान रखनी है हम सबको, अमृत लगे रहते रहो, मुरली रोज करो, कम से कम 5 बार तो रेगुलर मुरली पढ़ो और दिन में थोड़ी थोड़ी देर में आप मुरली के लिंक करो, सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, चार्ट भरो, मुरली पढ़ के बाबा को याद सोचो ये 4 बार, और फिर 4 परहेज पके लो, पता कर मन में भी पवित्र खाली करिए, समय संपर्क में पवित्रता, शुद्ध साधन, ये अचार वगैरह खाना, मिर्चे खाना, बहुत नमक खाना है छोड़ दो, है ना, सिंपल रोटी, सिंपल सब्जी खाओ, फल खाओ, सलाद खाओ, ऐसी कुछ उत्तेजना वाली चीजें मत खाओ, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये सब पीने कम कर दो, धीरे धीरे हटा, और संग बाबा और मुरली का संग करो, और फिर चौथा निधारना, गुस्सा आए गुस्सा टाल दो, गुस्सा मत करो, चिंता आए टाल दो, फुल स्टॉप लगा दो, दैवी गुणों का धारण, तो जितना आप करते जाओगे परहेज, ये 4 परहेज करोगे तब अमृत वेला पावरफुल होगा, मुरली पावरफुल होगी, अटेंशन सारा दिन की मुरली रहेगी, का हिसाब किताब बाबा को दे दो, पोता मेल दे दो, मतलब लेटर लिखो, चार्ट भरो, मुरली पढ़ के बाबा के याद में सोचो, करते करते क्या हुआ, एक दिन आपकी अवस्था अपने आप ही और जल्दी ही है ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और हम बाप समर बन जाएंगे, अपने आप को एक पुरुषार्थ दो, आप भट्टी में आयो ना, अपने आप को समय दो कि मुझे फरवरी मास में है ना क्या बन जाना है, संपन्न और संपूर्ण बन जाना है ना, ये अपने आप को पुरुषार्थ 31 मार्च तक कर दे दो है ना, फिर ना 31 मार्च तक मुझे संपन्न और संपूर्ण बन जाना है, ऐसा अपने आप को समय दे दो है ना, और रोज चेकिंग करते करते हमारा समय ऐसा हो ही जाएगा। ओके चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें।